ਹਾਂਜੀ
ਬਾਬਾ
ਹੈ
ਰਾਮ ਰਾਵਣ ਬਨਤਾ और कृष्ण कंस बनता इसके बाद से पार्ट जैसी राम ने रावण का पार्ट बजा लिया कृष्ण ने कंस का पार्ट बजा लिया इसके बाद से कौन से पार्ट अदा करेंगे
इसके बाद
हाँ कुछ एंड होने के बाद से
अरे कलयुग के बाद कौन सा युग का पार्ट आता है पहले सतो प्रधान फिर रजो प्रधान फिर तमो प्रधान हर एक आत्मा ऐसा ही तो पार्ट बजाती है सतो प्रधान है तो राम का पार्ट तमो प्रधान है तो रावण का पार्ट
बाबा तो इसका एक तो कुछ टाइम तो होगा
क्यों नहीं टाइम होगा सबसे ज्यादा लंबी आयु कौन से वंश वालों की होती है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वालों की सबसे ज्यादा लंबी आयु होती है लेकिन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी साथ साथ पुरुषार्थ करते हैं कि अलग अलग पुरुषार्थ कर लेते हैं राम वाली आत्मा कृष्ण वाली आत्मा को साथ लेकर के पुरुषार्थ करती है या पुरुषार्थ करके पहले आगे चली जाती है साथ साथ पुरुषार्थ करती है तो जो भी षष्ठी रूपी रंगमंच है उसमें जिस धर्म की आत्मा सबसे पहले आई है वो सबसे पहले सतो प्रधान पार्ट बजाती है चाहे राम का पार्ट बजाएं और चाहे कृष्ण का पार्ट बजाएं और सबसे लास्ट में वो तमो प्रधान पार्ट बजाती सबसे लंबी आयु किसकी हुई उन्हीं आत्माओं की सबसे लंबी आयु है तो जो तामसी पार्ट चलेगा वो कब चलेगा दूसरी आत्माओं के मुकाबले पहले चलेगा या लास्ट में चलेगा
पहले चलेगा
पहले देवता धर्म की आत्माएं जो है वो ज्यादा लंबे समय तक सुख भोगती है या दूसरे धर्म की आत्माएं ज्यादा लंबे समय तक सुख भोगती है देवता धर्म की ज्यादा लंबे समय तक सुख भोगती है सुख भोगती है माने सात्विक रहती है और लास्ट में जाकर के तामसी बनती है तो उन आत्माओं में सबसे अग्रणी तो है राम कृष्ण की आत्मा इसलिए एकदम लास्ट में जब सब अपना अपना तमो प्रधानता का करिश्मा दिखा लेते हैं कि कौन कितना तामसी बन सकता है तब लास्ट में ये बाप और बाप का बच्चा अपना करिश्मा दिखाता है
जी बाबा 36-37 के आसपास
जब लास्ट होगा तभी विनाश काय से होता है इम्प्योरिटी से होता है विनाश जो जितना ज्यादा पवित्र बनता है उतना ही ज्यादा अपवित्र भी बनता है इसलिए बाबा बोलते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है तुम नहीं इतने तमो प्रधान बन पाओगे न दुनिया का विनाश हो पाएगा ऐसे ही रखड़ते रहोगे और दुनिया को रखड़ाते रहोगे हम ये काम पूरा कर देते हैं जल्दी से और
बाबा ये पार्ट जो राम और रावण का जो है उस 36-37 के
राम रावण का पार्ट
नहीं जैसे राम रावण बनता है कृष्ण कंस बनता है पार्ट में
तो 5000 वर्ष के अंदर की बात है राम से रावण बनता है
36-37 के आसपास
और लोहा ही तो लोहे को काटेगा विष ही विष को मारेगा तो सारी दुनिया तमो प्रधान बनती है उसे तमो प्रधान दुनिया को खलास करने के लिए फिर कौन चाहिए
बाबा ये जो अति इंद्रियां सुख का जो अनुभव होगा वो तमो प्रधान के बाद से होगा कि तमो प्रधान के पहले होगा
बाप विदेशी बन करके आए हुए हैं या विदेशी हैं
बनकर
तो फिर कर्नाटक जोन हुआ ना उनका हेड बताया है कर्नाटक जोन वालों को ईश्वरीय सेवा में बहुत फर्स्ट क्लास टीचर मिले हुए नाटक करने वाले तो रामकृष्ण की आत्माएं तो एक तरह से नाटकबाज है, इसलिए बोला बाप दादा चाहे तो अभी भी वापस जा सकते हैं। और
तो बाबा ये क्लियर तो नहीं हुआ,
क्यों
जो अत इंद्रियां जो सुख होगा वो कब निकले?
अतीत इंद्रियों, जो अतीत इंद्रियां हैं ऐसी स्टेज में होंगे तब अतीन्द्रिय सुख होगा, या इंद्रियों के भान में होंगे तब अतीन्द्रिय सुख होगा। इंद्रियां भले हों लेकिन इंद्रियों से अतीत स्टेज हो जाए तब अतीन्द्रिय सुख होगा।
हाँ जी,
ये दोनों काम साथ साथ चलते हैं। अभी प्रैक्टिस बताई हुई है, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। और
बाबा भी बोले कि जो नौधा भक्ति करता उन्हीं को सशक्त रहता।
बताया कि जितनी श्रेष्ठ भक्त आत्मा होती है उसको साक्षात्कार होता है। भक्त आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा को साक्षात्कार की दरकार ही नहीं। तो बेसिक वाले कौन सी स्टेज पे हैं? भक्त की स्टेज पे हैं या ज्ञानी की स्टेज पर है? भक्त की स्टेज पर है।
फाउंडेशन बनने का बाबा
है,
फाउंडेशन भी बाप ने डाला।
काय का फाउंडेशन?
बाप विदेशी बना तो बच्चे भी विदेशी बने।
सब बच्चे कैसे विदेशी बन जाएंगे? बाप तो विदेशियों को पढ़ाने के लिए विदेशी बनता है और सब बच्चों से मिलने के लिए विदेशी बनता है। बच्चों को सबसे मिलना जरूरी है क्या?
बाप को जरूरी
है। और
बाबा नौधा भक्ति किसे कहते हैं? जो नौ धर्म
होती है तो अपने अपने तरीके से याद में बैठती है। उनका साकार सैम्बुल अलग अलग प्रकार का होता है या एक ही प्रकार का होता है? तो नौ धर्म है तो उनके साकार सैम्बुल कितने हो गए?
नौ
प्रकार के हो गए। उनके नौ प्रकार का ज्ञान हो गया। ऐसे ही नौ प्रकार की भक्ति होती है। भक्ति में होता है नाम और ज्ञान में होता है काम। यहाँ याद करते हैं और वहाँ नाम जाप करते हैं।
बाबा जो सहनशीलता का गुण और सामना करने का गुण है, ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों में विशेष कौन सा होता है?
सूर्य और सागर, सूर्य में शक्ति है। कैसे भी कचड़े को, कैसी भी दुर्गंध को भस्म करने की। और सागर भी लहरों से मुकाबला करता है, सामना करता है। फिर ऐसे भी नहीं है कि सिर्फ सामना ही करता है, अपने अंदर समा भी लेता है। मैंने सहन करने की भी शक्ति है और समाने की भी शक्ति है। वो तो सूर्यवंशी हुए क्योंकि उनके उस वंश के द्वारा फाउंडेशन पड़ेगा, नई दुनिया बनेगी। बाद में फिर सहयोगी के रूप में ऐड होते हैं चंद्रवंशी, वो सहन करने वाले हैं, ठंडे हैं।
बाबा जैसे बोला जी शक्तियां ही विनाश करने के निमित्त बनती हैं।
हाँ जी,
एक कब विनाश करने के निमित्त बनती है?
जब तामसी बनती हैं तब।
नहीं बाबा, तो एक तामसी विनाश करना होता है कि जैसे ब्राह्मण परिवार का विनाश करना, एक होता है दुनिया का विनाश करना।
पहले किसका विनाश होगा?
पहले ब्राह्मण परिवार का विनाश होगा।
फिर सूक्ष्म में हो जाएगा तो स्थूल में तो अपने आप होता रहेगा।
बाबा तो संगठित रूप में जैसे विनाश हो जाएगा ब्राह्मण तपस्या कैसे करेंगे माउंट आबू?
विनाश होगा तो अपवित्र का विनाश होगा या पवित्र का विनाश होगा?
अपवित्र का
चाहे बेसिक की दुनिया हो, चाहे एडवांस की दुनिया हो और चाहे बाहर की दुनिया हो, जो अपवित्र वाइब्रेशन बनाने वाली आत्माएं हैं उनका ही विनाश होना है। निमित्त बनाया हुआ है शक्तियों को, शिव न्यूट्रल रहता है, नहीं तो शिव बाबा के ऊपर दोष आ जावे।
बाबा एक वाणी में बाबा ने बोला है कि साधनों के आधार पर जो प्रसाद किया जाता है, साधनों के आधार पर जो प्रसाद किया जाता है,
जी
वो प्रसाद इतना नहीं है जिस दिन की मतलब बिना साधन के आधार किया जाता
है। ठीक है, अभी जैसी शक्ति होगी वैसा ही पुरुषार्थ करेंगे। शक्ति निराधार बनने की है, मना शरीर के जो तंत्र हैं, इंद्रियां हैं, उनके बगैर पुरुषार्थ करने की आदत पड़ी हुई है। ये साधन है ना, हाथ पांव नाक कान, इंद्रियां भी तो साधन है। इनके बगैर हम वातावरण बनाना ये सेवा कर सकते हैं? दुनिया को चेंज करना है, चेंज तो करना है, लेकिन क्या आत्मिक शक्ति हमने इतनी जागृत कर ली कि कर्मेंद्रियों की हलन चलन भी न करना पड़े, दृष्टि से देखने की भी दरकार नहीं है स्थूल दृष्टि से, और वाचा से वाचा चलाने की भी दरकार नहीं है, और फिर भी हम वातावरण को चेंज कर दें। खूंखार जानवर हमारे सामने आए और सरेंडर कर दे, खूंखार आदमी हमें मारने के लिए आए और चेंज हो जाए। इतने निराधार बने हैं, अगर बने हैं तो भले साधनों को छोड़ दे, अगर नहीं बने हैं और पूर्व जन्म के प्रारब्ध से ही साधन मिलते हैं कि बिना पूर्व जन्म के प्रारब्ध के साधन मिल जाते हैं? पूर्व जन्म ने कोई किसी ने अच्छा पुरुषार्थ किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो इस जन्म में साधन आराम से मिल जाते हैं। तो उन साधनों का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना है, अगर स्वतः ही मिल रहे हैं तो करना चाहिए, बाकी अधीन होने की दरकार नहीं है।
पूर्व जन्म से पहले का जन्म
जो वाइब्रेशन है ये चारों ओर फैलता है,
जितनी ताकत होगी उतना दूर तक फैलेगा।
और जो खास रिएक्शन है दृष्टि ऐसे हमारी जाती है, खास दिशा में जाती
है,
किसी को याद करते हैं
वो दिशा कोई है, पूर्व दिशा में ही जाएगी क्या? जिस दिशा में डालेंगे उस दिशा में जाएगी।
बाबा जो साधन अभी साइंस ने निकाले हैं, जैसे टेलीविजन है या जो टेप रिकॉर्ड है या जो कुछ चीज है, उसकी भी बात है।
हाँ, जो भी साधन है और जो जिन जिनको जो साधन मिल रहे हैं वो अपने पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के आधार पर मिल रहे हैं या बिना हिसाब किताब के मिल रहे हैं? अच्छे कर्म किए हैं तो साधन भी खूब मुहैया है उनको, और कोई ना ऐसे कर्म किए हैं कि कोई साधन उनको मिलता ही नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग जिनके पास हवाई जहाज हैं, हेलीकॉप्टर है। तो जिसके पास जो साधन है मुहैया, उसको ईश्वरीय सेवा में लगाएगा तो भाग्य बनेगा या नहीं बनेगा?
बनेगा।
दादी प्रकाश मणि का नामकरण बाबा ने किया है।
शुरू शुरुआत में ढेर सारे नाम बांटे गए थे, साक्षात्कार से ढेर सारे संदेशियों ने नाम लाए, बाद में वो ज्ञान में से टूटते गए तो नाम लेना बंद कर दिए।
कहाँ है घर, उसका ज्ञान कहाँ से आया
है? ठीक है,
माउंट आबू से ज्ञान आया,
माउंट आबू से ज्ञान आया,
ऐसे बोला है, घर है माउंट आबू
है,
अब क्लियर नहीं बना,
घर है माउंट आबू,
टीचर घर छोड़कर तुमको पढ़ाने आते हैं,
हाँ जी,
कहाँ है घर,
एक एक बात उठाओ ना, तो सारी मुरली एक साथ पढ़ दोगे तो कैसे क्लियर होगा, तो क्लियर करना क्या चाहते,
बाबा घर कहाँ है,
घर तो वही है जहाँ से हम आए हैं, वहीं वापस जाए उसी को कहेंगे घर, जो जहाँ से आता है वहीं वापस जाता है तो समझ लो वो ही घर है। और
गीता ज्ञान कहाँ से आया,
गीता ज्ञान तो गीता माता से ही आता है, दाता है भगवान, और
बाबा माउंट आबू में जैसे सारे ब्राह्मण इकट्ठे होकर जैसे संगठित रूप से तपस्या करेंगे, अच्छा वहाँ बाप भी होगा, सारे लोग ब्राह्मण परिवार होंगे, तो वहाँ कौन सा अपवित्रता की बात है जिसे विनाश होगा सृष्टि का,
वहाँ अपवित्रता की बात होगी तो वहाँ विनाश होगा, जहाँ अपवित्रता होगी वहाँ विनाश होगा, या जहाँ पवित्रता का वाइब्रेशन फैलेगा वहाँ विनाश होगा,
जहाँ पवित्रता का वाइब्रेशन फैलेगा वहाँ विनाश नहीं होगा,
फिर
जहाँ अपवित्रता का,
ये तो आपने उल्टी बात कह दी कि माउंट आबू में कौन सा पवित्रता होगा, वो कौन सी अपवित्रता है जो विनाश होगा,
जिस दुनिया का विनाश,
हाँ तो माउंट आबू में थोड़ा ही है वो वाइब्रेशन,
तो बाबा वो
तो तामसी समय में माउंट आबू भी तामसी बन जाता है जब बाबा दूर हो जाता है साकार में,
बाबा में 37 36 37 जब बाबा जब सकार में लेकर जाता है दोबारा, तब ब्राह्मणों को राम बाप जो साथ लेकर जाता
है, लेकर के जाता है
तब ब्राह्मणों को तपस्या कराने के लिए,
ब्राह्मण कितने होंगे,
साढ़े 4 लाख होंगे,
4.5 लाख इकट्ठा ही ले जाएगा,
नहीं पहले सूर्यवंशियों को ले जाएगा फिर चंद्रवंशी, फिर
सूर्यवंशी भी कितने होंगे,
50,000
अच्छा, तो जो होंगे वो नंबर वार होंगे सब एक जैसे होंगे,
नंबर वार होंगे,
उनमें कोई लीडर होंगे कि नहीं होंगे, और कोई प्रजा वाले होंगे पीछे पीछे चलने वाले, तो किनको ले जाएगा पहले,
पहले जो लीडर होंगे,
लीडर होंगे उनको ही ले जाएगा, सब तो एक साथ जाने जा भी नहीं सके,
तो बाबा साथ में कहते हैं एक ही गाड़ी चलेगी,
अरे जब सिंध हैदराबाद में
बाकी काटे
जब सिंध हैदराबाद से छोड़ करके कराची गए थे, इकट्ठे हो गए थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, खून खराबा हुआ, तो हर जगह से एक ही गाड़ी चली थी जो सब सेफ हो गए थे उस गाड़ी में, और बाद में जो गाड़ियां चली वो सेफ नहीं रही, काट डाली गई, जहाँ से भी जो गाड़ी चली वो एक ही गाड़ी तो चली ना, पहली गाड़ी में जिनको जाना था वो चले गए बच गए, बाद वाली गाड़ी में जो चले या दूसरी तीसरी गाड़ी में जो चले काटे मारे गए,
नहीं आप कहते हो ना भी सभी एक साथ कैसे जाएंगे, नंबर बार जाएंगे,
हाँ
तो फिर गाड़ी
हाथ में परम धाम में जाएंगे, नंबर बार जाएंगे कि एक के बाद वो इकट्ठी चली जाएगी,
उनको तो बाबा गाड़ी की जरूरत ही नहीं है, उनको तो गाड़ी की जरूरत,
पुरुषार्थ की गाड़ी नहीं है, यहाँ भी पुरुषार्थ की, यहाँ भी स्थूल गाड़ी होगी, जिनके संकल्प तीखे होंगे उनकी बुद्धि में झट टच हो जाएगा, चलो दौड़ो,
हाँ एक गाड़ी चलेगी लास्ट में वो स्थूल
गाड़ी, क्या कोई एक स्थान है,
वो स्थूल गाड़ी की बात है जो दूसरी मतलब
एक गाड़ी चले कोई एक स्थान की बात है, अलग अलग स्थानों से एक जगह पर गाड़ी जाएंगी तो एक गाड़ी होगी कि अनेक प्रकार अनेक गाड़ियां होंगी।
स्थूल गाड़ी की तो बात है ना,
स्थूल भी होगी तो सूक्ष्म भी होगी। सूक्ष्म है संकल्पों की ट्रेन, और संकल्पों की ट्रेन जितनी ही अभिविचारी होगी उतना जल्दी टचिंग होगी।
तो 50,000 जो सूर्यवंशी है वो तो पहली ट्रेन में चले जाएंगे, बाकी फिर
उनमें प्रजावर्ग के नहीं है,
बाकी धर्मों वाले किस गाड़ी से जाएंगे?
उसमें प्रजावर्ग के नहीं है, उसमें फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा है या नहीं है?
50,000 ही तो जाएंगे ना टोटल।
तो उसमें 50,000 जो उसमें प्रजावर्ग ज्यादा है कि लीडर ज्यादा है?
प्रजावर्ग ज्यादा है।
फिर वो कैसे पहले चले जाएंगे?
लीडर।
और
लक्ष्मी की पूजा साल में एक बार होती है।
किसकी?
लक्ष्मी की।
हाँ जी।
और सरस्वती की प्रतिदिन पूजा होती
है।
सरस्वती की
जगदम्बा की पूजा होती रहती है। हाँ, सरस्वती की पूजा होती रहती है, लेकिन लक्ष्मी की पूजा एक ही बार होती है। एक ही बार में पूजा होने के बाद काम संपन्न हो जाता है, दीपक जल जाते हैं, या जो सरस्वती की रोज रोज पूजा होती है उससे दीपक जल जाते हैं?
लक्ष्मी की एक बार,
एक बार लक्ष्मी की जो पूजा होती है वो लक्ष्मी एक बार में ही ऐसा काम कर देती है जो परिवर्तन हो जाता है। जगदम्बा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और लक्ष्मी से सिर्फ धन की आस पूरी होती है। लक्ष्मी भी अपना धन देती है या भगवान बाप का दिया हुआ देती है?
भगवान बाप का दिया हुआ,
लेकिन शुद्ध धन देती है, अपना मिक्सरिटी किया हुआ नहीं देती।
कहाँ से आया? दो गीताएं हैं।
हैं?
गीता ज्ञान कहाँ से आया? दो गीताएं हैं।
हैं?
तो कौन सी गीता से ज्ञान?
सच्ची गीता से एक सेकंड में स्वर्ग, और झूठी गीता से 2,500 वर्ष में स्वर्ग से नरक बन जाता है।
अब नाम क्या
है? क्या
नाम?
एक है भक्ति मार्ग, एक है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग की गीता होगी वो धारणा वाली होगी या बोल बोल वाली होगी? और भक्ति मार्ग में बोल बोल ज्यादा होता है कि धारणा ज्यादा होती है? दो तरह की देवियां होगी।
ज्ञान की अभी भाषा क्या है?
ज्ञान की भाषा है सारा
बाबा। आज की मुरली में जो बात है बोला कि चेहरे बदल गए, वो कौन से चेहरे?
जो आत्माएं बेसिक से शरीर छोड़ रही है, और बेस मान लो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ने के बाद एडवांस पार्टी में प्रवेश कर लिया, तो चेहरा बदल गया कि रह गया? स्थान बदल गया कि रह गया? बदल गया। वाइब्रेशन बदल गया या रह गया? बदल गया, सब कुछ बदल गया।
तो पहले भी एक बार सुना था कि 108 की माला दिखाई थी ना, चेहरे दिखाए थे उनके, संदेश जी को शायद।
वो तो संदेश ही को दिखाए,
वो उसने पहचाना नहीं था कोई भी चेहरा। तो अभी भी शायद ऐसा ही तो नहीं कही, मतलब पहचाने नहीं उसने इस बार भी।
तो जो अज्ञानी है वो क्या पहचानेंगे? यहाँ ज्ञानी पहचान पहचान के भूल जाते हैं, बाप को भी भूल जाते हैं। सो
इधर एडवांस पार्टी के भी तो कुछ चेहरे होंगे शायद।
कुछ चेहरे क्या, सारे एडवांस पार्टी के ही थे,
इसीलिए ने पहचान में आएंगे।
हाँ जी, इसलिए कैसे पहचान में आएंगे?
बाबा जैसे इस स्थूल में कहा राज्य प्रकाश करने के लिए कि ब्राह्मण आत्मा के यहाँ जन्म लेगी, तो वो सूक्ष्म में यहाँ किस कैसे? मतलब
सूक्ष्म में क्यों होंगे? साकार में होंगे, सूक्ष्म में होंगे? प्रवेश करने वाले भी सूक्ष्म में, और जिनमें प्रवेश करना है वो भी सूक्ष्म में हो जाए, तो पार्ट कैसे बजेगा? साकार सृष्टि का पार्ट तो तब बजेगा जब प्रवेश करने वाले सूक्ष्म हो,
साकार में
इंस्पिरेटिंग पार्टी हो, और जिनमें प्रवेश करना है वो प्लानिंग पार्टी हो, साकार में हो।
پہلے تو بابا بتایا تھا کرشن کا اسکول جنم 2018 میں ہوگا.
اسکول جنم کہاں تھا؟ کون سی مرلی میں بتایا ہے؟
سمجھ میں آیا؟
تم نے سمجھ لیا تو تمہاری بدھی کے اوپر مایا نے آوارن پھیر دیا تو اس کا کوئی کیا کرے. جیسے 66 میں گھوشنا کی 75 میں پوری دنیا کا وناش ہو جائے گا, نئی دنیا استھاپن ہو جائے گی. تو اگر کوئی سمجھ لے کہ 500 کروڑ کی دنیا وناش ہو جائے گی تو اس میں بابا کا کیا دوست؟
ہماری بدھی میں تو یہی سمجھتے تھے.
تو بدھی بیکاری ہے نربیکاری ہے؟
بیکاری.
ویسا ہی وائبریشن پکڑ لیتی.
بابا تو ہر بات کو بھی حدیث بولتے ہیں, ہم بتے
نہیں. پھر بابا یہ بھی تو کہتے ہیں جب ٹائم آئے گا اس بات کا ارتھ کھل جاتا ہے. سب باتیں ابھی بتا دے گا تو آگے چل کے کیا بتاؤں گا؟ جو پڑھائی آگے چل کے پڑھانے کی ہے, ایم اے بی اے کی پڑھائی ایم اے بی اے میں پڑھائی جائے گی, بعد میں پڑھائی جائے گی یا پرائمری اسکول میں پڑھا دی جائے گی؟ کیوں یہاں یہاں 9 دیویاں نہیں ہیں, 9 پٹرانیاں نہیں ہیں, 8 پٹرانیاں چھوٹی بڑی ہیں, یہ ایک ساتھ ہیں, ہر دھرم سے کنیکٹڈ ہیں کہ کسی ایک ہی دھرم سے ہیں؟ ہر دھرم سے کنیکٹڈ ہیں. تو آگے پیچھے ہوئی نا
بابا, جو 9 منی مسلم بنے ہیں.
9 کائے کے لیے؟ ابھی تو 14-15 تک ہیں اور جلدی جلدی کھلنے والے ہیں.
پہلے پہلے 9 بنے تھے نا.
تو پہلے پہلے کیا ایک ساتھ بن گئے تھے 9؟ ٹھیک ہے, وہ تو جو پالنا ہے وہ پالنا کی ساتوکتا ہے. سوریہ ونش کی پالنا, چندر ونش کی پالنا, اسلامیوں کی پالنا, کرسچنس کی پالنا, بودھیوں کی پالنا, انتر تو ہے نا. ہاں جی,
ساگر منتھن ہوا تو 14 رتن نکلے تھے.
ہاں جی,
14 رتن چیتن میں کیسے
ہے؟ 14 رتن چیتن میں کیسے؟ کیوں گیان کا کلش چیتن میں نہیں ہے؟ پوری سبھا گھوڑا نکلا تو گھوڑا چیتن میں نہیں ہے؟
کون کون سے مطلب
بتا تو رہے ہیں.
گھوڑا
ہال ہال بس نکلا تو چیتن میں بس ہال ہال نکلا نہیں, گیان کلش نکلا تو چیتن میں گیان کلش نکلا نہیں. کلش کہو, گھڑا کہو, درون کہو, اور
جس کا گھڑا کر رہا
ہے
گیان کلش تو ہو گیا, بس کا گھڑا.
بس کا گھڑا کوئی کو کھوپڑی ہوتی ہے جس میں بس ہی بس بھرا رہتا ہے, وائبریشن بس کے نکلیں گے, دستی بسیلی نکلے گی, باچا بسیلی نکلے گی, تو کیسا گھڑا ہے؟ بس کا گھڑا ہے.
بابا سکھ دھرم میں جو 5ویں گرو تھے نا, ان کو تتی تبھی پر بٹھایا گیا, ان کو کشٹ ملے, ان کو جو کشٹ ملے اس وقت پانچویں گرو تھے نا, ان کو
گرو
ارجن دیو جی کو وہ جو کشٹ ملے وہ کس آدھار پر ملے, جو کون سی مطلب آتما ہے؟
سب سے زیادہ کشٹ کون سا دھرم پتا ہے جس کو سب سے زیادہ کشٹ جھیلنا پڑا تھوڑے ہی سمے میں؟ کون سے نمبر کا دھرم پتا ہے؟ اچھا اچھا, ایسا کوئی دھرم پتا کو ہوا کہ ہاتھوں میں پاؤں میں اور پیٹ میں کیلیاں ٹھوک دی گئی ہو؟
جو
اوپر سے نراکاری بن کر کے اترے ہی ہے نا, اوپر سے جب آئے ہیں تو نراکاری آئے ہیں یا آکاری آئے ہیں یا ساکاری آئے ہیں؟ निराकारी आए हैं तो जैसे आए हैं वैसे ही देखने में आएंगे ना।
तो शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो
शिव बाबा की प्रवेशता और धर्म पिताओं की प्रवेशता में अंतर नहीं है। वो धर्म पिताएं अपने को प्रत्यक्ष करते हैं तो चेहरा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, और शिव बाबा तो गुप्त पाठ बजाता है या प्रत्यक्ष पाठ बजाता है?
गुप्त पाठ।
वो तो अंत में प्रत्यक्ष होगा, जिसमें प्रवेश करे उसका पुरुषार्थ जब पूरा हो जाए।
बाबा वो जब धर्म पिता किसी में प्रवेश करते हैं तो एक ही पर्सन के द्वारा पाठ बजाते हैं, और सुप्रीम सर तो टाइम टू टाइम कई आत्माओं के द्वारा पाठ बजाते हैं।
ये तुम्हारी भूल है। अगर बहुतों में प्रवेश करता है तो सर्वव्यापी हुआ या एक व्यापी हुआ? कभी बोलते हो एक व्यापी है, कभी बोलते हो सर्वव्यापी है।
नहीं बाबा, मेरे कहने का मतलब
क्या
दूसरे तरह से है
क्या?
किसी को सकाश देने के लिए चला तो जाता है,
वो पता चलता है? कोई कह सकता है कि किसमें आया? कोई प्रूफ मिलता है?
प्रवेशता का न पता चले, सकाश का तो पता चलता है।
कोई प्रूफ मिलता है?
हाँ
मिलता है। अगर प्रूफ मिल जाएगा तो सब कोई कहेगा मेरे में प्रवेश हुआ।
नहीं, प्रूफ का मतलब जो बुद्धि में नहीं था वो आ गया
बुद्धि में। ऐसे तो बहुतों की बुद्धि में आ जाती है नई नई बात।
बाबा वैसे तो पांच आत्मा प्रवेश टेम्परेरी तो करते हैं।
नहीं,
मुख ब्रह्मा जिस तरह में प्रवेश करते
शिव जो है वो बाप के रूप में सिर्फ एक ही रूप में आता है।
बाप के रूप में,
टीचर के रूप में सिर्फ एक में ही आता है। सदगुरु के रूप में सिर्फ एक में ही आता है। अगर अनेकों में प्रवेश करने लगे फिर तो सर्वव्यापी हो गया कि एक व्यापी हुआ?
मुकर्र रूप के एक ही में है।
हाँ जी, कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा है।
लेकिन इस तरह के धर्म पिताओं में जो ऊपर जाते वो नहीं करते हैं,
वो एक में ही प्रवेश करके दुर्गति हो जाती है। तो अनेकों में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होने की क्या बात है?
अष्टदेव हैं, अपने दुख को कंट्रोल करते हैं अपनी मन बुद्धि के द्वारा।
अपने ग्रुप को कंट्रोल करते हैं
अष्टदेव, जैसे जो नौ रत्न है ना,
रत्न अलग है,
उनको कंट्रोल करते हैं ना।
रत्न अलग है और देव अलग है।
अष्टदेव कंट्रोल करते हैं।
रत्न अलग अलग धर्मों के मुखिया है और देव
पूर्व
सिर्फ सूर्यवंश के हैं। देव उन्हें कहा जाता है जो 84 जन्म लेते हो। जिन्होंने 84 जन्म ही नहीं लिए उन्हें देव कहा जाएगा? रत्नों की क्वालिटी और कीमत अलग अलग होती है, और हीरे की कीमत सबसे ऊपर होती है। अष्टदेव सब हीरा हैं, हीरो पार्टधारी है। कोई भी धर्म में लास्ट जन्म में जाके गिरेंगे वहां भी हीरो पार्ट बजाएंगे।
जो अच्छे प्रसाद के बच्चे होंगे बाबा
वो सब प्रकार के अनुभव होते जाएंगे। हम क्या बनने वाले हैं, कब नाश होगा, उनको सब अनुभव होते जाएंगे। ये प्रसाद पर डिपेंड करता है।
ठीक है, जिन्होंने पुरुषार्थ ही किया है, देह अर्थ नहीं किया है, स्वार्थ स्वार्थ के लिए नहीं किया है, तो उनको अनुभव होगा। और जिन्होंने सब कुछ पुरुषार्थी जीवन तो दिखाने के लिए रखा लेकिन किया तन के पोषण के लिए, तन के संबंधियों के पोषण के लिए, समय अर्पण किया तन के लिए, तो उनको कैसे अनुभव होगा?
जो तन के लिए किया या संबंधियों के लिए किया वो तो सब प्रसाद ना होगा।
हाँ, वो आत्मा के लिए थोड़े ही हुआ, तो शरीर के लिए हुआ, देह के लिए हुआ, देह के संबंधियों के लिए हुआ।
अनुभव भी वैसा ही करेंगे जैसा किया
63 जन्म जो अनुभव करते आए देह का, और वो ही संगम युग में अनुभव किया तो क्या विशेष किया? 63 जन्म में तो स्वर्ग बनाने वाला, स्वस्थिति धारण करने वाला सदा सेवा आया हुआ नहीं था। अभी तो आया हुआ है, पढ़ाई पढ़ा रहा है कि कैसे स्वस्थिति से स्वर्ग का अनुभव करें। यही इस दुनिया में, इस नरक की दुनिया में आके स्वर्ग का वर्षा देता है। वंडरफुल बात, रहे नरक की दुनिया में और अनुभव क्या करें, स्वर्ग का अनुभव करें।
निराकारी स्टे में जाने के लिए कम से कम कितना पुरुषा चाहिए, कितने घंटे का रोजगार?
टाइम की लिमिट बांध देंगे तो घंटा हो जाएगा?
तो घड़ी में
सिर्फ लिमिट बांधने से ही घंटा हो जाएगा या कुछ और भी करना पड़ेगा? जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा।
कम से कम होता नहीं
मेरा कुछ नहीं सब तेरा, तो क्या रह जाएगी बिंदी? निराकारी बनने का मूल मंत्र क्या हुआ?
सब कुछ
तेरा, सिर्फ कहने के लिए नहीं,
करके दिखाने के लिए।
प्रैक्टिकल में खुद भी देखें, दूसरे भी देखें, अनुभव करें कि इसने अपने लिए कुछ भी
नहीं
परवाह की। निराकारी बनेगा।
हम कुछ ज्ञान में कुछ देर चलते हैं, साल दो साल चार साल के बाद में छोड़ देते हैं, तो वो क्या वो वापस आएंगे या उनका क्या है?
ज्ञान में चलते हैं, पवित्रता की जो पढ़ाई जा रही है वो पढ़ते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो प्रजा वर्ग में चले जाते हैं।
के बाद में फिर वो आएंगे जब
कहाँ जाएंगे? हत्ती तो एक ही है सच्चाई की, सचखंड में जाना सबको है नंबर वार, तो एक से ही सच्चाई मिलेगी, दूसरे से कहाँ से मिलेगी? एक ही ठिकाना है सत्यधाम, एक ही है या अनेक है? एक ही है सत्यधाम।
गायत्री व्रत जो है इसका शीर्षक तो माताओं कन्याओं के नाम से है। जो गायत्री मंत्र है शीर्षक तो कन्याओं माताओं के नाम से है, गायत्री गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी के नाम से
है,
लेकिन संबोधन जो है ये त्रिदेव को है।
जैसे तीन देव हैं तो उनके साथ तीन देवियां नहीं है, और तीन देव अकेले कुछ कर पाएंगे बिना देवियों के? तीन देवताएं जो हैं वो देवियों को साथ न लेंगे तो स्वर्ग में का काम पूरा कर स्वर्ग स्थापन होगा है?
जो श्लोक दिया हुआ ना उसमें तो देवियों के नाम तो है ना, ओम
किसमें
कहा गया है ना?
हाँ,
सप्तम्बर में भरपूर देवों से दी कहीं योग।
अब काम पूरा किसने किया, देवताओं ने काम पूरा किया या देवियों ने पूरा किया है? अरे श्लोक में वो तो बोलने की बात है, लेकिन जब करने की बात आई तो करने का काम प्योरिटी करेगी या देवता का, वो जो देवताएं पुरुष रूप में है वो करेंगे? पुरुष तो सारे ही दुर्योधन तो शासन बता दिए, तो देवता बन ही नहीं पाएंगे, इसलिए तीन देवियों का नाम पहले रख दिया। गायत्री जिन तीन का गायन है वो
बाबा धाम जाते हैं लोग
है?
बाबा धाम जाते हैं लोग हज में भक्त लोग
है,
तो बाबा धाम से कांवड़ का क्या कनेक्शन है?
बाबा धाम से
कांवड़
निकल
जाते हैं,
कावड़ लेके जल लेकर आते हैं ना जी,
गंगा जल लेके आते हैं, कावड़ लेके आते हैं,
इतना मटका
शिवरात्रि को फिर उस पर चढ़ाती है।
वो तो श्रवण की कहानी है, उस कहानी से जुड़ा हुआ है। जो कांवड़ लेके जाते हैं उनमें आगे माता को और पीछे पिता को बैठाया हुआ है, एक जगह से भरा ज्ञान जल उनकी बुद्धि में और दूसरी जगह चढ़ाया। ندیوں سے بھرتے ہیں اور دیوالے میں جا کے چڑھاتے ہیں.
اور چڑھاتے ہیں اور دیو کا دیو مہادیو تو پہلے ہی ہے, کیا چڑھا رہے ہیں شنکر جی کا تو چلاتے ہیں کیا نیل کر وہی تو بنایا ہوا.
بابا گیان جل تو باپ سے لیتے ہیں, تو پھر جیسے نبی سے لیا پھر باپ پر چڑھایا, ایسے کیوں مزے نہیں آتا؟
جو باپ آ کر کے باپ کے روپ میں گیان جل دیتے ہیں اس سے جو مالا پہلے پہلے بنتی ہے اس مالا کا نام کیا ہے؟ ارے باپ جس منکوں جن منکوں کو آ کے گیان دیتے ہیں ان منکوں کی مالا کا سنگٹھن کا نام کیا ہے؟ رودر مالا. وہ رودر مالا کچھ کر پاتی ہے؟ کچھ کھر تیل نکلتا ہے؟ کھر تیل تو کچھ نہیں نکلتا. وہ کھر تیل نکلے گا ہی تب جب کنیاؤں ماتاؤں کو آگے رکھیں گے. نہ بیسک نالج میں اس بات کا کوئی دھیان دیتا اور نہ ایڈوانس نالج میں کوئی دھیان دیتا. بیسک نالج میں بھی بھائی لوگ گرو بن کر کے بیٹھ گئے اور ایڈوانس میں بھی بھائی لوگ گرو بن کر کے بیٹھ جاتے, کنیا ماتاؤں کو پیچھے چھوڑ دیتے. کام کچھ ہونے والا نہیں ہے. کام کب ہوتا ہے؟ جب کنیا ماتائیں ندیاں نکلتی ہیں تب کام سمپن ہوتا ہے. اس لیے بولا کنیا ماتاؤں کے مکھ سے گیان سننے میں اچھا لگتا ہے. کنیا ماتاؤں کو ہی دینا چاہیے. تو ندیاں گائی ہوئی ہیں کانوڑ بھرنے کے لیے. ندیوں میں سے بھرو پھر دیوتا کے اوپر چڑھاؤ, مہیما کرو.
بابا جی اس کی لنگ مندر بنا ہوتا ہے
جی,
اس میں مٹکا لگتا رہتا ہے, ایک ایک بوند پانی گرتا رہتا ہے, اس کا کیا ارتھ ہے؟
لنگ ہے کس کی نشانی ہے؟ جس تن میں پرویش کیا ہے اس کی نشانی ہے, اور پرویش جس نے کیا ہے اس کی نشانی ہے بندو. لنگ میں بندو نے پرویش کیا. اب گرمی کس کو چڑھے گی؟ ساکار کو گرمی چڑھے گی یا نراکار کو گرمی چڑھے گی؟
ساکار کو گرمی
چڑھے گی. تو جس کو گرمی چڑھتی ہے اس کو پھر ٹھنڈے ٹھنڈے جل کی گیان جل کی بوندوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ جل بھی جو بھگوان کی مہما کا جل ہے وہ جل بھی کس کے دوارا پڑنا چاہیے؟ گھڑے کے دوارا دکھایا, کلش دکھاتے ہیں. یہ کلش ہے, وہ کون ہے کلش؟ جل کا بھرا ہوا کلش ارپن کیا گیا. ہاں جی, ارپن کرتے ہیں شیو کے اوپر. ایک دو ارپن نہیں کرتے ہیں, ڈھیر سارے ارپن. روز لوٹی چڑھاتے ہیں, چاہے لوٹی کا ہو چاہے گگری کا ہو چاہے کلش کا ہو, بات ایک ہی ہے. چل अभी बुद्ध रूपी क्षेत्र में प्रवेश होकर के पाट बजाती है। बुद्ध रूपी पेट है ना, तो बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके पाट बजाती है तो बच्चे भी निराकारी साथ साथ बनेंगे बाप के, या बाप पहले से तो पटाख बन जाएंगे। बाप बच्चों को साथ लेकर चलते हैं या बाप पहले पहले चला जाता है? ये दुनिया आग की दुनिया होने वाली है, काम क्रोध की आग जल रही है, माया ने आग लगा दी। तो कोई बाप ऐसा होगा कि बच्चों को छोड़ करके पहले भाग जाए परमधाम में अपने घर, दूसरे घर में? तो बाप का विरुद्ध है। कैसे? निराकारी बाप का विरुद्ध है। साथ रहेंगे, साथ खेलेंगे, साथ जावेंगे। तो बुद्धियों की बात हुई, बुद्धिमान की बुद्धि बाप की बात हुई। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन सा बाप है, साकार या निराकार? निराकार। तो वो साथ लेकर के जाएगा। तो जो साकार मनुष्य शक्ति का बाप है और उस साकार मनुष्य शक्ति में जो पहला प्रिंस है, उस आत्मा को साथ रखेगा या पहले खुद चला जाएगा? साथ लेकर जाएगा। तो बाप की बुद्धि सात्विक बनती है तो साथ साथ प्रश्न, बच्चे की बुद्धि भी सात्विक बनती है। अगर कृष्ण बच्चे की बुद्धि सात्विक न बने बुद्ध रूपी पेट में, तो स्थूल पेट से उसका जन्म कैसे होगा? होगा नहीं होगा? 2018 में संगमयुगी कृष्ण के जन्म की बात है, सत्युग के कृष्ण की बात नहीं है।
बाबा ये राम सेतु के बारे में थोड़ा झगड़ा चल रहा था।
है
राम सेतु?
हाँ।
नेहद
में राम सेतु नहीं दिखाई पड़ता है। पत्थर बुद्धि मनुष्यों को ज्ञान जल में तैराए के और रावण की दुनिया तक पहुंचाया जाता है। रावण की दुनिया से कनेक्शन जुड़ा हुआ है कि नहीं एडवांस पार्टी के पत्थरों का? जुड़ा हुआ है तो सारा ज्ञान वहां तक पहुंच रहा है। उन बनाया किस लिए जाता है? कनेक्शन जोड़ने के लिए बनाया जाता है ना। तो ज्ञान का, एडवांस ज्ञान का सारा कनेक्शन राम संप्रदाय से रावण संप्रदाय तक जुड़ा हुआ है। जो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है वो रावण संप्रदाय की ओर है या राम संप्रदाय की ओर है? वो उस सेतु को पसंद करेगी या नहीं करेगी? रावण संप्रदाय वाले प्रैक्टिकल में अभी क्या कर रहे हैं? कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं एडवांस पार्टी वालों से या नहीं जोड़ना चाहते? उधर जाओ तो इधर नहीं जाओ, इधर आओ तो उधर नहीं जाओ। तो वो राम सेतु को पसंद करेंगे नहीं करेंगे? भक्ति मार्ग में भी कोई पाठ चल रहा है और ज्ञान मार्ग में भी कोई पाठ चल रहा है। गवर्नमेंट नहीं चाहती क्या ये राम सेतु का चक्कर चलता रहे? और जो जनता पार्टी है वो क्या चाहती है? जनता पार्टी है या अज्ञानता पार्टी है? जनता पार्टी क्या चाहती है? राम सेतु बना रहे, राम सेतु होगा तो रावण राज्य की दुनिया खलास हो जाएगी। राम सेतु ही नहीं होगा तो रावण संप्रदाय वाले कन्वर्ट कैसे होंगे राम संप्रदाय?
कृष्ण
इसका पहले जन्म का नाम होता है ब्रह्मा। कृष्ण जिसके पहले पूर्व जन्म का नाम होता है ब्रह्मा, और वो ब्रह्मा दो हुए, एक हुआ प्रजापिता ब्रह्म और एक हुआ सिद्ध ब्रह्म। तो जो दादा लेखराज ब्रह्मा और प्रश्न की सोल है अंतिम जन्म में, उसके 100 साल ब्रह्मा के कब पूरे होते हैं? 88-89 में। जब 100 साल मृत्यु लोक के ब्रह्मा के पूरे होते हैं तो वो कौन से लोक में जाता है? अमर लोक में जाता है। गर्भ में जाता है या जन्म लेके जाता है? ज्ञान गर्भ में पीपल के पत्ते पर जाता है। तो वो ज्ञान गर्भ की बात है कि मृत्यु लोक में ब्रह्मा का शरीर छूटा और वो आत्मा अमर लोक में वैकुंठ में जाकर गर्भ में प्रवेश हो गई। पीपल के पत्ते की यादगार है, गर्भ महल की यादगार। आत्मिक स्थिति का अंगूठा चूसता हुआ दिखाया जाता है। कौन से सागर में पत्ता पड़ा हुआ है? विषय सागर में पड़ा हुआ है। विषय सागर कहो या विकारों की जेल कहो, देवकी और वसुदेव है जिनके गर्भ में वो बच्चा दिखाया जाता है, वो विषय सागर में होते हैं या क्षीर सागर में होते हैं? विषय सागर में होते हैं। परंतु उस विषय सागर में होते हुए भी वो बच्चा बड़ी मौज में रहता है, क्योंकि मनन चिंतन मंथन की अमूठा चूसते हुए स्टेज में दिखाया गया। फिर बच्चा प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्षता कब कही जाती है? जैसे बच्चा कोई भी होता है जन्म लेने से पहले पेट में गुप्त होता है गर्भ में, बाद में प्रत्यक्ष हो जाता है माने जन्म लेता है। तो ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म है जो 98 में कृष्ण और देवकी अर्थात उनको जन्म देने वाले वो जेल के जेल में ही पड़े रहते, विकारों की जेल में। और बच्चा कहाँ चला जाता है? वो गर्भ जेल से बाहर आ गया। इसलिए बाबा ने बताया है कि कृष्ण के माँ बाप का उतना गायन नहीं है जितना कृष्ण बच्चे का गायन, क्योंकि कृष्ण बच्चा है निर्विकारी और माँ बाप है विकारों की जेल में पड़े हुए। तो वो डबल जेल दिखाई है या सिंगल जेल है? है डबल जेल है। और उस जेल में से प्रत्यक्ष होने की जन्म होने की निशानी ये है कि उस दिन 15 अगस्त भी होता है, स्वतंत्रता दिवस समाप्त का दिवस है, विकारों की जेल से स्वतंत्र होने का दिवस। 15 अगस्त का दिन भी होता है और जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। इसकी यादगार कृष्ण जन्म की यादगार। अब प्रश्न ये होता है कि 98 में कृष्ण का जन्म है या 2018 में? इसका जवाब ये है कि संगमयुग में ब्राह्मण होते हैं या देवता होते हैं या क्षत्रिय होते हैं? ब्राह्मण कब संपूर्ण माने जाते हैं? जन्म लेने से ही संपूर्ण हो जाता है ब्राह्मण? कब संपूर्ण होता है? जब यज्ञोपवीत धारण करे तब संपूर्ण ब्राह्मण कहा जाता है। द्विजन्म, एक जन्म तो गर्भ से जन्म लिया और दूसरा जन्म ज्ञान गर्भ में परिपक्व होकर के निकले। 2000 में बाप प्रत्यक्ष तो होते हैं बच्चे के द्वारा, यादगार भक्ति मार्ग में दिखाई जाती है कि रात्रि में 12 बजे शिव का जन्म भी होता है और कृष्ण का जन्म भी रात्रि के 12 बजे। जैसे शिव जयंती में कृष्ण जन्म और कृष्ण जयंती में शिव जयंती हो जाती है, लेकिन वो जन्म संपूर्ण जन्म नहीं है। दूसरा जन्म जब होता है तो यज्ञोपवीत धारण कर लेता है। यज्ञोपवीत किस बात की निशानी है? वो तीन सूत्र हैं त्रिमूर्ति शिव के, उन तीन ज्ञान के सूत्रों को पूरा पूरा जीवन में धारण कर लेना। कंधे पर धारण किया जाता है ना, कोई वजन उठाते हैं तो कहाँ रखते? कंधे पर रखते। तो तीन मूर्तियों के संपूर्ण ज्ञान का जो वजन है वो उठाया हुआ है, जिम्मेवारी ली हुई है। जब वो जिम्मेवारी लेते हैं तब वो दूसरा जन्म कहा जाता है। और दूसरा जन्म जब होता है ब्राह्मण का तब शादी होती है या पहले ही जन्म के बाद शादी कर देते हैं? तब विष्णु बनता है बाद। तो 18 जो है वो संपूर्ण ब्राह्मण है 2018 में, और 1998 में संपूर्ण ब्राह्मण नहीं कहेंगे। हाँ ये कहेंगे जो अव्यक्तवाणी में बोला है उस समय 99-2000 में बाप बच्चे के द्वारा तो प्रत्यक्ष होते ही है, लेकिन बोला है तुम बच्चों के सामने बाप प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया के सामने भोजन हो गए, गुप्त हो गए। क्या दुनिया के सामने 76 में और उससे पहले गुप्त नहीं थे? फिर 2000 में खास बोलने की क्या जरूरत? इसलिए जरूरत है कि बाप ब्राह्मणों की दुनिया वालों को पढ़ा रहे हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में परिवर्तन कर रहे हैं या बाहर की दुनिया में परिवर्तन कर रहे? ब्राह्मणों की दुनिया में ही, कोई बाहरी दुनिया वाले हैं? बाप की दुनिया से उनका कनेक्शन नहीं है, उनके लिए गुप्त हो गए। 98 का जो हादसा हुआ
ایک بار اگر کوئی دھوکہ کھا جاتا ہے, وہی دھوکہ اگر بار بار کھاتا رہے تو گیانی کہیں گے یا اگیانی کہیں گے؟ تو اگیانی ہو گیا, اٹھانوے میں تو دھوکہ لیا. تو گپت ہو گئے, توڑے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو ہو کر کے پانڈو نے پارٹ بجایا جس کی یادگار خاص کمپلی نگر میں دکھائی جاتی ہے. لمبے سمے تک کمپلی نگر میں واس کیا, اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے, کوئی خون خرابہ نہیں ہوتا, نہیں تو خون خرابہ ہو جائے. اس لیے سانپ مرے نہ لاٹھی ٹوٹے. بھلے اجانی لوگ تو پھر بھی کہتے ہیں بھگوان ہے تو بھاگا بھاگا کیوں پھرتا ہے؟ اب ان بھکتی مارگ کی بدھی والوں سے پوچھا جائے, تمہارے کرشن بھگوان کنس کے ڈر سے گاؤڑے گاؤڑے میں بھاگے بھاگے کیوں پھرتے تھے؟ تمہارے رام بھگوان راون کے ڈر سے کانٹوں کے جنگلوں میں کیوں پڑے ہوئے تھے؟ تمہارے شنکر بھگوان بھسماسر کے ڈر سے ساری دنیا میں بھاگے بھاگے کیوں پڑے؟ بھگوان کی کوئی یکتی ہوگی. اور دھرم پتائیں آتے ہیں تو ان کے پیچھے خون خرابہ ہو جاتا ہے, کہیں کسی کو سولی پہ لٹکائے دیتے ہیں, کہیں مار پیٹ ہو جاتی ہے, کہیں کیا ہو جاتا ہے. لیکن بھگوان آ کر کے یکتی سے کام نکالتے ہیں. کرشن کہاں پیدا ہوتا ہے؟
کب پیدا ہوتا ہے؟
ساری کتھا ہو گئی, ابھی تک یہی پتا نہیں چلا. شریر سے پیدا ہونے کے پیچھے پڑنا ہے یا بدھیوگ سے جو پیدائش ہوتی ہے اس کو جاننا ہے؟ دونوں جاننا ہے. شریر سے پیدا ہوگا تو کچھ دماغ میں نہیں رہے گا, سب بھول جائیں گے. باقی بابا نے بتایا ہے جمنا کے کنٹھے پر میٹھی میٹھی ندیوں کے کنارے تمہاری راجدھانی ہوگی. بابا ایسے ہی بہت زیادہ کچھ کیا.